संयुक्त राष्ट्र रेडियो से पेश है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 11 अक्टूबर 2019 के इस बुलेटिन में शामिल हैं। तुर्की द्वारा सीरियाई सीमा में कुर्दिश लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बाद बढ़ा तनाव। प्रसव के दौरान होता है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, WHO ने तैयार की रोकथाम रणनीति। आत्महत्या से हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की हो जाती है मौत, कारणों की निशानदेही और सटीक इलाज की जरूरत पर जोर। विश्व में 2 अरब से ज्यादा लोग नेत्र समस्याओं और दृष्टि बाधिता से पीड़ित, आंखों की पर्याप्त देखभाल करने की पुकार। 1 अरब से ज्यादा युवा लड़कियां बन रही हैं बदलावों की वाहक, जिसकी रफ्तार को अब रोकना है मुश्किल। और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद को वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर बधाई। हम आपको याद दिला दें कि मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने गुरुवार को कहा है कि सीरिया के पूर्वोत्तर इलाके में हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के कारण लाखों लोगों को सुरक्षा की खातिर वो इलाका छोड़ना पड़ा है। इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को ही तुर्की ने सीरिया में कुछ हवाई और ज़मीनी हमले किए थे। UN शरणार्थी एजेंसी ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का सम्मान करने का आग्रह किया है। इनमें ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूरी सामग्री पहुंचाने के लिए एजेंसियों को रास्ता देना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में लाखों लोग अब भारी मुसीबत में हैं। आम लोगों और सिविलियन बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। एजेंसी ने आगाह करते हुए कहा कि मौजूदा हालात से सीरिया की स्थिति और ज़्यादा बदतर होने का अंदेशा है, जबकि सीरिया में इस समय विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन या शरणार्थी संकट बना हुआ है। 50 लाख से ज़्यादा सीरियाई लोगों को शरणार्थी के तौर पर जीवन जीना पड़ रहा है और अन्य लगभग 60 लाख लोग देश के भीतर ही विस्थापित हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने भी पहले से ही भीषण युद्धग्रस्त देश सीरिया में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति भड़कने पर गहरी चिंता जताई है। गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ही सीरिया से अमरीकी सैनिक हटाने की घोषणा की थी। अमरीकी सेनाएं कुर्दिश मिलिशिया के साथ कई वर्षों से काम कर रही थीं, जिन्हें YPG के नाम से जाना जाता है और तुर्की उन्हें आतंकवादी मानता है। सीरिया में लगभग 8 वर्षों से चल रहे युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच करने वाले स्वतंत्र जांच आयोग का कहना है कि इससे भी ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि सैन्य गतिविधियां बढ़ने से असुरक्षा और अफरा तफरी के हालात बढ़ेंगे, जिनसे आइसिल या दाएश जैसे अतिवादी गुटों के फिर से सक्रिय हो जाने के हालात पैदा हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का एक नया अध्ययन दर्शाता है कि निम्न आय वाले 4 देशों में कराए गए सर्वे में शामिल लगभग 1/3 महिलाओं ने बताया कि प्रसव के दौरान उनके साथ कभी न कभी दुर्व्यवहार किया गया। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए रणनीति का खाका भी तैयार किया है। घाना, गिनी, म्यांमार और नाइजीरिया से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ये अध्ययन द लैंसेट साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
इस अध्ययन में 2000 से ज्यादा महिलाओं की परिस्थितियों को परखा गया। इसमें पाया गया कि 42% महिलाओं ने प्रसव के दौरान शारीरिक और शाब्दिक दुर्व्यवहार, लांछन और भेदभाव का सामना किया। UN स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार प्रसव के दौरान दाई की मदद के अलावा अगर गुणवत्ता परक सहारा मिलता है तो वही जीवन और मौत के बीच का अंतर तय कर सकता है। दाई का काम और प्रसूति विद्या से मातृत्व और नवजात शिशुओं की मौत के मामलों को 80% तक कम करने में मदद मिली है और समय से पहले बच्चा होने के मामलों में 24% तक की कमी आई है। इसके बावजूद 800 से ज्यादा महिलाएं हर दिन प्रसव और मातृत्व के दौरान मौत का शिकार होती हैं। युवा और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा उनके साथ भेदभाव, बिना सहमति के मेडिकल परीक्षण होने, जबरन चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने और स्वास्थ्य कर्मियों की उपेक्षा का शिकार होने की आशंका बनी रहती है। बच्चों को जन्म दिए जाने के बाद की स्थिति वाली 2600 से ज्यादा महिलाओं के साथ इंटरव्यू किए गए, लेकिन उनमें भी दुर्व्यवहार के ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं। शोधकर्ताओं ने अपनी जांच में पाया कि सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चे होने के ऐसे 35 मामले सामने आए जिनमें मां की सहमति नहीं ली गई थी, जबकि 2500 से ज्यादा ऐसे केस थे जिनमें बिना अनुमति के उनके यौन अंगों की जांच की गई। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने रणनीतियों का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके तहत महिलाओं का इलाज करुणा और गरिमा के साथ किए जाने की अनुशंसा जारी की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को जवाबदेह बनाने, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखरेख के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और महिला अधिकारों के लिए स्पष्ट नीतियां बनाना अहम बताया गया है। इसके लिए प्रसव वार्ड बनाते समय महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखने, चिकित्सा परीक्षणों के दौरान उनकी सहमति का ख्याल रखने, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को मदद प्रदान करने, प्रसव पीड़ा और शिशु के जन्म के समय किसी के साथ होने का अधिकार सुनिश्चित करने और ऐसी गुणवत्तापरक मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है जहां दुर्व्यवहार के मामले अस्वीकार्य हों।
दुनिया भर में करीब 800,000 लोग हर साल आत्महत्याओं की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 15 से 29 वर्ष की उम्र के युवाओं में मौत का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। गुरुवार 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आत्महत्याओं को रोकने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ही जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत लंबे समय तक अनदेखी का शिकार रहा है। इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये एक ऐसा विषय है जिसका संबंध सभी से है। महासचिव का कहना था,
We need stronger investments in services and we must not allow stigma to push people away from the assistance they need.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि सेवाओं में और ज्यादा निवेश करना होगा और हमें ऐसे कारणों को रद्द करना होगा जिनकी वजह से लोग जरूरत पड़ने पर चिकित्सा मदद लेने से कतराते हैं। मैं अपने मन की बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस विषय पर चिंता है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य नहीं है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 के अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस को समर्थन दिया है। संगठन का कहना है कि हर वर्ष दुनिया भर में जितनी मौतें युद्ध और मानव हत्याओं की वजह से होती हैं उनकी कुल संख्या से भी ज्यादा मौतें आत्महत्याओं के कारण होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सितंबर 2019 में प्रकाशित ताज़ा आंकड़ों में कहा गया है कि विकासशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं के बीच सीधा संबंध देखा गया है। इसके साथ ही किसी मुसीबत की हालत में होने वाले सदमे, हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना भी आत्मघाती बर्ताव से बहुत गहराई से जुड़ा देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठन अब से पहले भी विश्व दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिलाते रहे हैं। इनमें बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, कामकाज के स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य, विभिन्न मुद्दों या विषयों पर दोषारोपण और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा तक जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही ये भी शामिल है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को किस तरह से समर्थन व सहायता दी जाए। विश्व में 2 अरब से ज्यादा लोग नेत्र समस्याओं और दृष्टि बाधिता से पीड़ित हैं और आने वाले दशकों में आंखों की सही ढंग से देखरेख किए जाने की जरूरत का दायरा वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से मंगलवार को एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जो नेत्रों से जुड़ी समस्याओं पर अब तक की पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से ज्यादा लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका इलाज संभव है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे तथ्य साझा किए हैं जो दर्शाते हैं कि आंखों की समस्याएं जीवन शैली में आए बदलावों से भी बढ़ रही है। इनमें विशेष तौर पर टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से होने वाली समस्याएं भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में डॉक्टर अलर्को ससिएजा ने जिनीवा में पत्रकारों से कहा, आज हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग दृष्टि बाधित हैं। इनमें से लगभग 1 अरब लोग ऐसी दृष्टि बाधिता के साथ जी रहे हैं जिसे होने से रोका जा सकता था या अब भी उसका सटीक इलाज हो सकता है। कुछ ठोस करने की जरूरत तो है। ये थे डॉक्टर अलर्को सिएजा के शब्द। डॉक्टर सिएजा का मानना है कि युवा भी इस जोखिम से अछूते नहीं हैं। कमजोर नजर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि बच्चे अब ज्यादा समय घर से बाहर नहीं बिताते हैं। ये एक ऐसा रुझान है जो चीन सहित कुछ अन्य देशों में दिखाई दे रहा है। ट्रकोमा सहित अन्य आम नेत्र समस्याओं से निपटने में 8 देशों को हाल के दिनों में सफलता मिली है और यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने इसका स्वागत किया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि और बुढ़ापे के साथ साथ जीवन शैली में परिवर्तन व शहरीकरण से नेत्र विकारों, दृष्टिबाधता और नेत्रहीनता से पीड़ित लोगों की संख्या में नाटकीय ढंग से बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट में खासतौर पर रोकथाम की अहमियत को रेखांकित किया गया है, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा लोग ऐसी दृष्टि समस्याओं से पीड़ित हैं जिन्हें समय पर इलाज करके दूर किया जा सकता है। दृष्टिबाधता और नेत्रहीनता की समस्याओं पर काबू पाने के लिए $14.3 अरब की धनराशि का अनुमान जताया गया है। निम्न आय वाले क्षेत्रों, पश्चिमी और पूर्वी सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में ऐसी समस्याओं की रोकथाम विशेष रूप से अहम है, क्योंकि यहाँ नेत्रहीनता की दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में औसतन 8 गुना ज्यादा है। आंखों की जिन समस्याओं का इलाज शुरुआती चरणों में किया जा सकता है उनमें डायबिटीज यानी मधुमेह के कारण होने वाले नेत्र विकार, मोतियाबिंद और ग्लॉकोमा प्रमुख हैं। डॉक्टर सिएजा ने बताया कि दृष्टिबाधता को बढ़ती उम्र के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सही ढंग से देखरेख की जाए जैसे ग्लॉकोमा के मामले में, तो ग्लॉकोमा से होने वाली दृष्टिबाधता की रोकथाम की जा सकती है। या अगर आपकी मोतियाबिंद की सर्जरी हो जाए तो मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिबाधता को रोका जा सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी होगा कि देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में इलाज को जरूरी हिस्से के रूप में शामिल किया जाए और उसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से जोड़ा जाए।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विश्व में 1 अरब से ज्यादा युवा लड़कियां ऐसे बदलावों का वाहक बन रही हैं जो स्वतः स्फूर्त हैं और जिन्हें आगे बढ़ने से अब रोका नहीं जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बचपन में शादी किए जाने, पढ़ाई पूरी न हो पाने और समान अवसरों से वंचित होने की चुनौतियों के बावजूद वे प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। एक डिस्पैच सचिन गौड़ से।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां हर दिन रूढ़िवादिता को चुनौती दे रही हैं, बाधाएं तोड़ रही हैं और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों से निपटने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन प्रमुख ने कहा कि लड़कियां अपने प्रयासों में स्वतः स्फूर्त साबित हो रही हैं जिन्हें अब रोका नहीं जा सकता, और यही इस वर्ष इस दिवस की थीम रेखांकित करती है। इन प्रयासों के केंद्र में कम उम्र में शादी कराए जाने, शिक्षा हासिल करने में मौजूद खाई को पाटने, हिंसा से निपटने और जलवायु संकट के विरुद्ध मजबूती से खड़े होना है। महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए वैश्विक प्रयासों के फलस्वरूप 1995 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन पारित किया गया। उनके सशक्तिकरण का ये ब्लूप्रिंट चीन में 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन का नतीजा था, जिसमें 30,000 से ज्यादा पुरुषों और महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस ऐतिहासिक नीति एजेंडा को लागू किए जाने के बाद से ही ज्यादा संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं और पढ़ाई पूरी कर रही हैं। कम संख्या में उनकी बचपन में ही शादी हो रही है या वे माँ बन रही हैं और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो हुनर भी विकसित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 1 दशक में ऐसी लड़कियों की संख्या 15% तक घटी है जिनकी बचपन में ही शादी करा दी जाती थी। साथ ही वर्ष 2000 से 2016 के बीच प्राथमिक स्तर पर शिक्षा ना हासिल करने वाली लड़कियों की संख्या 5,80,00,000 से घटकर 3,40,00,000 रह गई। इन सफलताओं के बावजूद लड़कियों को उनकी पूर्ण संभावना तक पहुँचने से अब भी रोका जाता है। यूनिसेफ के कारण कई कारणों की वजह से उनके भविष्य पर पहरे लगते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लड़कियां व महिलाएं विश्व भर में जननांग विकृति का शिकार होती हैं। मानव तस्करी का शिकार हर 4 में से 3 पीड़ित महिलाएं व लड़कियां होती हैं और संकटग्रस्त इलाकों में रह रही महिलाओं की व्यथा भावी पीढ़ियों के भविष्य पर भी असर डालती है। युवा लड़कियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और 21वीं सदी के हुनर में प्रयासों और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबिय अहमद को वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच मेल मिलाप कायम करने और शांति समझौते में उनकी भूमिका की सराहना की है। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने रेखांकित किया है कि आबिय अहमद को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, विशेषकर इथियोपिया और इरिट्रिया में सीमा संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए। अप्रैल 2018 में कार्यभार संभालने के बाद से आबिय अहमद ने इरिट्रिया के साथ मेलजोल बढ़ाने के प्रयास किए। इरिट्रिया पहले इथियोपिया का ही एक प्रांत होता था। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा में एक ऐतिहासिक बैठक के बाद दोनों देशों के बीच पिछले दो दशक से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाने में सफलता मिली थी। यूएन महासचिव ने एक बयान जारी कर कहा कि वो अक्सर कहते रहे हैं कि अफ्रीका में बदलाव की बयार चल रही है। प्रधानमंत्री आबिय अहमद इसका एक प्रमुख कारण है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि के सहारे इथियोपिया और इरिट्रिया का मेल मिलाप हुआ, जो एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर के उस क्षण का प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव करने के लिए यूएन प्रमुख स्वयं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अफ्रीका में अन्य देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और दर्शाया है कि लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजोले ने भी इथियोपियाई प्रधानमंत्री को बधाई दी है। ट्विटर पर अपने एक संदेश में उन्होंने कहा कि शांति और संवाद के उनके निर्णायक संकल्प को 5 महीने पहले ही तब पहचाना गया था जब उन्हें यूनेस्को का सर्वोच्च शांति सम्मान दिया गया था। तो आज के इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाज़त दीजिए और आप मल्टीमीडिया सामग्री के लिए यूएन न्यूज़ हिंदी की वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi।